लेके
वो बैठना चाहती है क्या?
Sunbath.
Morning. I think
it is. Udilo Aruna Purabha Bhage Dvijamani Gora Amani Jage
Udilo Aruna
Dvijamani Gaura Amani Jage
Udila Aruna Dvijamani Gaura Amani Jage
Makata Samuha Loya Sathe Gelana Garbhaje
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 Tathe Tathe Bajala Khol Ghana Ghana Sahe Jhanjhararo Bajla khol Ghana ghana Tahe Jhanjhararo
Bye.
व्याधारी बोल न बोल रे वदन भरी
मुकुंद माधव यादव
बोल न बोल रे वदन भरी दिवस शरीर साजे दवश गेल रे राति दिवस शरीर साजे करो भावन के
मन दुर्लभ मानव देह पाया की करो भावन के
मन दुर्लभ मानव देह पाया की करो भावन के
Yeah.
जान हसार ताहे नाना विध विपद भार
ना Thank you. नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, दूसरे के बाद पूरे ऊंचे में एक। यस सर, कैसे शुरू होगा? ये हमारा स्टैंडर्ड सुबह का धुन है, तो ये सबको बराबर आना चाहिए। कैसे ये धुन? जीव जागो का धुन और उदिल अरुण, ये धुन हमारा सुबह का है, तो जब भी हम गाएंगे इस धुन में हमें गाना चाहिए। और ऐसे जब आते हैं तो नीचे ऊपर, जैसे जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। और फिर जब दूसरे इसमें आएंगे, हाँ ये तो कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो, फिर वो जीवो बुलिया से संसार भीतरे। और फिर तीसरे में कब कैसे क्या करेंगे? तीसरे पंक्ति शुरू, तुमार लोहिते आमी, नीचे आओ। हाँ फिर से गाओगे? जी बजा जा ऐसे ऐसे कर सकते हो, उदिल अरुण से वो स्टार्ट कर, मतलब मन में उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गोरा मणि जागे, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। एक एक लाइन बोलो, दो दो बार बोलते हैं ना, एक एक लाइन।
Oh,
ऊपर नीचे ऊपर एक महामंत्र नीचे एक महामंत्र ऊपर जीव जागो
हरे कृष्णा हरे
आरती गाते हैं कीर्तन करते हैं तो ये दो हमारे लिए क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मापदंड है इसके इसके अनुसार हमें करना चाहिए। उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमनि गौर अमनि जागे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे महामंत्र कई बार गा के नीचे ही स्वर में फिर ऊंचे स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सचित पुत्र प्रभु गाओगे अभी जीव जागो एक लाइन एक बार और उसके बाद दो बार महामंत्र इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सुबह का धुन स्टैंडर्ड धुन हमारा होना चाहिए और जहां तक हो सके फिर इन दो में हमको काम चलाना चाहिए फिर उसको तेज गति से बोल सकते हैं नीचे वाले स्वर में तेज गति से और ऊंचे वाले स्वर में तेज गति से। ठीक है सच्ची पुत्र प्रभु गाओ कर्ता लेख ही बजाता है तो ताल अपना सेट कर सके
चांद बोले
तुम्हें
नीचे ले लो, अभी ऊपर में लिया, दूसरे पंक्ति अभी ऊपर में लिया था ना, अभी तीसरा नीचे में आना। तुम्हारे लोहिते आमने, कि ये हमारा रोज का धुन है ना, सुबह का बहुत जरूरी है हमको इसका पक्का होना। जीव जागो और फिर महामंत्र एक एक बार।
जीव जागो, जीव जागो, पूरा चंद्र बोले,
जीव जागो, जीव जागो,
विशाची
रघो
सबसे निवेदन है कि आप ये दोनों भजन उदिल अरुण पूर्व भागे और जीव जागो इसको प्रैक्टिस करें आप और फिर हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये धुन हमारे खून में बैठ जाना चाहिए, कभी भी वो अपने आप निकल जाना चाहिए, प्रैक्टिस से वो आ जाता है।
हमारा ये दो ही ट्यून से ही हमको गाना है सुबह।
हाँ,
फिर
फास्ट भी इसको दोनों में कर सकते हैं, परंतु इसी राग के थोड़े बहुत परिवर्तित रूप भी है। हरे कृष्णा वो कभी वो भी गा लेते हैं भक्त, और कभी फास्ट में दूसरे भी हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो और भी फास्ट में हो जाता है। परंतु वो किए तो ठीक है, नहीं भी किए तो ये दो स्लो में और फास्ट में।
हरे कृष्णा
वो इसका परिवर्तित रूप है, वो इस पॉपुलर हो गया है, एक भक्त ने शुरू किया था तब से सब जगह फैल गया, लेकिन चलेगा। ये भी सुबह का ही धुन है, हालांकि थोड़े भक्त इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमारे वरिष्ठ भक्त थोड़े थोड़े अनेक भक्त बोलते नहीं चलेगा, क्योंकि वो राग के ही थोड़ा परिवर्तन है, बस मूल सुबह का ही ये धुन है। मूल बात है कि सुबह का धुन सुबह ही होना चाहिए, 12 एक बजे के बाद सुबह का धुन नहीं गाते हैं।
फिर शाम को भजन गा सकते हैं?
शाम को जनरली नहीं गाते हैं, उदिला अरुण अरुणोदय के समय का कीर्तन है, जैसे विभावरी शेष है, अरुणोदय कीर्तन है, जीव जागो है, ये सब प्रातः काल के होते हैं, सूर्योदय के समय गाने वाले। अभी सूर्योदय तो नहीं है, फिर भी क्योंकि सुबह है तो हम गा रहे हैं, चल सकता है भागवत क्लास तक, सुबह का तक चल सकता है, लेकिन इसके बाद इतना उचित नहीं है गाना। ऐसे कोई पक्का नियम नहीं है कि नहीं गाना चाहिए, लेकिन जनरली नहीं गाते हैं, सुबह के समय ही गाते हैं। तो धुन का राग का जो समय के हिसाब से होता है ये बहुत महत्व होता है, तो सुबह का धुन बाद में नहीं गाते हैं, शाम को रात को। हालांकि हमारी संस्था में महत्व हरि नाम पे देते हैं, राग धुन पे इतना नहीं देते हैं, तो कभी कभी चल भी जाता है सुबह का धुन में भी, रात में हरे कृष्ण महामंत्र चल जाता है, क्योंकि महामंत्र बोल रहे हैं ना तो। परंतु गौड़ीय मठों में वगैरह पहले बहुत इसमें पक्के हुआ करते थे सब, हालांकि वो भी महामंत्र गा रहे हैं। तो एक बार हम वृंदावन में थे, इस बार नहीं बहुत पहले, 15-20 साल पहले की बात है, तो एक गौड़ीय मठ सन्यासी से बात कर रहे थे, तो इस विषय पे मुझे बोल रहे थे, एक किसी दूसरे गौड़ीय मठ की वो बात कर रहे थे, उनके गौड़ीय मठ की नहीं, उनके कोई गुरु भाई ने एक और गौड़ीय मठ चालू किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के बाद, तो फिर वो अभी नहीं रहे उनके गुरु भाई, उनके शिष्य चला रहे हैं वो मठ। तो ये सन्यासी बोल रहे थे कि हमने एक बार गए थे तो वो धुन जो गा रहे थे सुबह के समय, सुबह का धुन नहीं था। यदि फिर उन्होंने नाम लिया उनके गुरु भाई का, यदि वो होते तो आज ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे आज ये लोग ऐसे नहीं गा सकते थे, अभी उनको पता नहीं है, इसलिए ये सुबह का जो नहीं है राग वो भी अभी सुबह को गा रहे हैं। सुबह के समय सुबह का राग होना चाहिए, महामंत्र भी हो कुछ भी हो। तो हम लोग इसको, हम इतने कट्टर नहीं है इसके बारे में, परंतु फिर भी कम से कम मंगल आरती के समय तो, और दूसरा कोई धुन नहीं होना चाहिए सिवाय ये। ये राग का नाम कौन सा है, यमन है क्या ये, कौन कौन हमारे शास्त्रीय संगीत के कौन है? अच्छा तो किसी को पूछ लो आप, ये शायद यमन है या यमन ही है ना, तो यमन के भी थोड़े राग में क्या होता है, थोड़ा इधर उधर परिवर्तन करके थोड़ा राग को अलग अलग थोड़े रूप देते हैं, ऐसे भी होता है। तो लगभग यमन में हो तो वो चल जाए, ठीक है। तो आप सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि मंगल आरती के समय भी ऐसे, फिर फास्ट भी गा सकते हैं इसमें। और फिर ये एक पहला स्पीड है, फिर वो दूसरा स्पीड, तीसरे स्पीड में जाएंगे तब और फास्ट हो जाता है, ठीक है। संसार धावन के लिए भी है सेम, परंतु वो तो लगभग सभी लोग ठीक ठाक गाते हैं इससे उसी धुन में। क्या धुन है संसार दावा का, कौन गा के दिखाएंगे? नगिन प्रभु
संसार दावा कारुण्य गण गण कल्याण गुण वास्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंद।
फिर दूसरा माधव पंक्ति आती है तो उस समय क्योंकि इसको हम लोग खींचते हैं कभी कभी तो इसको ऊंचे स्वर में कई भक्त गा लेते हैं, तो पहले जो नीचे ऊंचे नीचे ऊंचा होता है, फिर पांचवे पंक्ति में आते हैं तो वो क्रम कभी कभी तोड़ देते हैं भक्त। ठीक है, चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो हम खींच लेते हैं ना अंत में। कैसे खींचते हैं? राम मूर्ति प्रभु गाओ। अच्छा गाय उसने मंगल गाओ।
श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना।
अच्छा, बढ़िया। तो कभी कभी फिर वो जो नीचे ऊंचे नीचे ऊंचा नीचे ऊंचा का क्रम इस पांचवी पंक्ति में हम तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। हाँ, लेकिन साधारणतः ऐसे ये होता है, नीचे ऊंचा नीचे ऊंचा। आप समझ गए? स्वर गति ताल इन सब में अंतर होता है।
लास्ट का भी उसमें
इसमें कभी कभी भक्त लोग खींच देते हैं, या नहीं खींचे तो भी चलेगा, किसी को खींचना है तो खींच सकते। और संध्या आरती के कीर्तन में भी एक बार भजन हो गया, गौर आरती गा लिया, फिर महामंत्र भी उसी में गाना चाहिए, उसी धुन में। और फिर आगे चल के फिर थोड़ा बहुत फिर बदल हो सकता है। कौन गाएंगे? पूरा पूरा संध्या आरती का नहीं गाना, केवल आखिरी पंक्ति कोई गाएंगे? अच्छा, पहले पहले पंक्ति कैसे होनी चाहिए?
जय गोरा चांदे
लाइन होता है ना, उसको इसको नीचे और फिर ऊपर दोनों में करते हैं। की बजाय गोरा चांदे आरती को शोभा, तो पहले लाइन को पहले नीचे स्वर में फिर ऊपर के स्वर, ऐसे हर एक पंक्ति को गाए। तो अभी आखिरी वाला आप एक कोई गा लीजिए, रामूर्ति प्रभु गाओगे आखिरी पंक्ति संध्या आरती।
शिव शिव शुक नारदा मेले गदा,
शिव शुभ
शिव
ठीक है। अभी आगे हम
हरे
नहीं शिव पंचतत्व महा पंचतत्व मंत्र आएगा ना,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती
बोलने के बाद फिर तत्व महामंत्र जो है ये साधारणतः तीन बार गाया जाता है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, नॉट लाइन ऑन स्टोन। चार बार गा लिया पांच कोई बड़ी बात नहीं है। कम माधव प्रभु। Come. Hari
Bol.
See, they got big bed for you. तो तीन चार बार चल जाएगा पंचतत्व महामंत्र, पंचतत्व मंत्र, हाँ ठीक है, अब याद रखेंगे तीन चार बार, ठीक है। और उनमें से यदि चार बार गाएंगे तो दो नीचे स्वर में, दो ऊपर में। लेकिन ये जैसे हमने एकदम कट्टर नियम नहीं, कम वेटिंग फॉर यू। और फिर महामंत्र भी उसी तरह से नीचे में थोड़ी बार, फिर ऊपर में थोड़ी बार, फिर दूसरे गति में सेकंड गियर में ऊपर जाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें एक दो बार, उसमें फिर ऊंचे वाले स्वर में दो बार, ऐसे करके हम जाएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड धुन होता है सुबह के लिए और दोपहर के लिए। साधारणतः तीन बार गाते हैं,
एक दो बार
तीन बार करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से भी देखा जाता है। इसलिए हमने कहा कि पत्थर की लकीर नहीं है, नॉट लाइन ऑन स्टोन। जब कभी कभी आरती की ये कम होता है, जैसे प्रभुपाद जी के समाधि में वृंदावन में, वहाँ केवल 15-20 मिनट की मंगल आरती होती है, तो उसमें एक ही बार महामंत्र गा के, पंचतत्व मंत्र गा के महामंत्र में चले आते हैं, तो परिस्थिति के हिसाब से। परंतु साधारणतः 25 मिनट की आरती रही तो तीन चार बार पंचतत्व महामंत्र करना चाहिए। और यदि कोई खास है, जैसे गौर पूर्णिमा है कुछ है, तो 5-6-7 बार भी गा सकते हैं, तीन बार भी ठीक है ऐसे। तो सुबह के लिए और शाम के लिए इस तरह से धुन रहते हैं। तो जब गुरु वंदना भी गाई जाती है या संसार दावा गाया जाता है दोपहर में, पुष्पांजलि होती है कभी आचार्यों के तिरोभाव आविर्भाव पर, तो उस समय संसार दावा सुबह के धुन में नहीं गाना चाहिए, संसार दावा फिर दूसरे धुन में गाना चाहिए। कौन से धुन में?
संसार दावा
ठीक है। वैसे प्रभुपाद जी के समय से नियम है कि दो दो बार गाते हैं, इसलिए सब जगह इस्कॉन में हर लाइन को दो बार गाते हैं, इसलिए मैं भी दो बार गा लेता। लेकिन जैसे हमने कहा प्रभुपाद जी के समाधि में वो एक ही समय या दो बार गाते हैं या एक बार, लेकिन समय कम होता है इसलिए हम लोग एक ही बार गा लेते हैं।
हम फिर दो दो बार गाते तो महामंत्र के लिए समय कम मिलते
हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये प्रथा तब से है।
मंदिर में अलग अलग करते हैं
सर। एक जीबीसी ने कमेटी बनाई थी कीर्तन स्टैंडर्ड्स कमेटी की, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए कीर्तन का, लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्ष अभी तक दिए नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अक्सर जहाँ हमारे बड़े मंदिर होते हैं तो हर एक दो दो बार ही एक लाइन को गाते हैं।
तुलसी की अलग अलग ट्यून में गाते हैं,
वो चल जाएगा, प्राय सुबह का लगभग होना चाहिए। थोड़े हमारे जनरल उसमें थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन कोई रात का धुन नहीं गाना चाहिए, चल जाएगा।
गौर कीर्तन में जो आर है आखिर सेकंड पार्ट, उसको भी दो बार गाते हैं ना?
सेम उसी में जैसे पहली बार गाया। दूसरी बार भी वैसे ही है। अच्छा पिन देखो, संभाल के उठो, नहीं पिन कहाँ गिरा देखो जरा। हाँ गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, ये रोज का है और भी हो सकता है। चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, परंतु कीर्तन के समय जब गुरु पूजा होती है ऐसे गाया जा सकता है, थोड़े भक्त गाते हैं, परंतु पहले वाला जो एक स्टैंडर्ड बन गया है इसलिए उसमें गाना ठीक रहेगा। हालांकि दूसरे में भी गाएं तो गलत नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल माधव प्रभु। तो माधव प्रभु को हमने खास निमंत्रण दिया था बुलाने के लिए, क्योंकि गोकुलधाम में आना और इनसे नहीं सुनना है तो हमारा आना अपूर्ण हो जाता है ना। आज वो ये नहीं रहते तो गोकुलधाम कब का बंद हो चुका होता नहीं, क्योंकि काफी 2004 में आए ना, तीन 2003 से 11 साल हो गए अब इधर है, इसलिए गोकुलधाम चल रहा है। तो खुद भी अभी बहुत परिश्रम करके सब निर्माण कार्य हो तरह तरह के चीजों में, इसलिए ये सब खून में भी बह रहा है। तो कभी डॉक्टर जाते नहीं है डॉक्टर के पास, लेकिन गए तो कोई खून निकाला तो उसमें देखेंगे वो सब स्वावलंबी और ये सब निकलेगा, उसका रिपोर्ट में आएगा, उसे आयरन वन वो सब नहीं आएगा, ये सब आएगा। तो मेरे माधव प्रभु से निवेदन किया था कि आके जो भी विषय पे बोलना चाहो बोल सकते हो, हो सकता है कोई किसी भी फिलॉसफी दर्शन के विषय में बोलना चाहते बोल सकते हो, या तो गोकुल धाम क्यों है, प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रकल्पों की कल्पना क्यों की थी, और ऐसे जो भी विषय हो बात कर सकते हैं। तो हिंदी में थोड़ी तकलीफ होती है बात करने में, तो मैंने कहा ठीक है इंग्लिश में बात करो। अच्छा, आप में से जिनको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद चाहिए तो अलग से हम अनुवाद कर सकते हैं ना, यहाँ कोई बैठ के करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। बीच बीच में हिंदी भी बोल लेंगे, अच्छा हिंदी बोल लेते हैं लेकिन हाँ, तो हिंदी में जिनको अनुवाद चाहिए शायद एक तरफ आना अच्छा रहेगा ना।
हाँ इंग्लिश वाले उधर जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा हिंदी लोग,
अच्छा इंग्लिश वाले जाने की जरूरत है तो हिंदी, हाँ,
जो भी इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी भी जानते हैं तो कोई समस्या नहीं।
हाँ प्रभु जी हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी छोटा फोटा चलेगा, अच्छा
बहुत अच्छा लगता है अच्छा हिंदी बहुत मीठा,
इंग्लिश बीच बीच में बोलेंगे तो भी चलेगा
तो इंग्लिश बोलो स्पीक वट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक हिंदी, एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, आसामीज छोड़ के। What?
What am I supposed to speak?
Speak, Gokuldham. Speak on anything, Gokuldham. All
right. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishna. Namaste, Saraswati Deva, Gauravani, Jai Shri Krishna Chaitanya,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Around the year 2002 or 1, I happened to come to Belgaum. And at that time, Maharaj was taking us around different parts of Belgaum. Belgaum was quite small at that time still. And he was showing us little plots of land, said, this we want to make a goshala. And then next time I come, I think he said, we want to make a bigger goshala here, and a temple on one side and a goshala on another side. So he kept on doing that, and then he came up with this, I think when he applied for some 200 acres of land, somewhere on the way to Kanapur, I think.
And then he'll end up with this 450 acres, or 500 or 60, 70 acres, man. So the purpose, then of course I happened to come here because it so happened that Krishna closed down the Bhaktivedanta Hospital. And he called me up to say, you know, now what do you want? Should we arrange a flat for you in Bombay? He says, well, I've got the orders to go to Gokulam, so I should better proceed. I think Krishna has closed the hospital down also. It was a lockout. So I came here. And ever since we came here, because of the principles on which Maharaj has based these Gokulam, it has been a forerunner in a lot of activities. It has been a forerunner in, especially in areas which would have probably never made any advancement. Had he not kept these principles, then we would have been, I don't think we would have had the same kind of effect in learning as we've had all these years. Because he was so strict and he was so uncompromising and not allowing us to use anything, any cement or any electricity or any machinery, that we've had to always find out a way to do without it. And because of that, we've been able to do what we've been able to do so far. And we've been able to inspire a lot of other people also to do it. Otherwise, I think we would have just been like anyone else. So this project has basically has its roots in his ideas of... he still have that. One statement there, which he wrote as a project report when he first wrote about Gokulam, was that eventually he wants nothing that is a product of the modern industry. So with that as an ideal to start off here, it was quite a difficult thing because we are hitherto city people and never lived without city products and basically industrial products. And the problem with that is that it basically compromises on our Krishna consciousness. And basically compromises on the very basic human value. Prabhupada is saying in the first canto, first chapter, verse number 10, in that canto, he says that four things sap the very vitality of human energy. He says the first is overeating. If you overeat, then your vitality, human energy, very vitality of human energy. And human life is meant for self-realization. So very vitality of human energy will be sapped away if one overeats. No overeating. And then secondly, Prabhupada says, oversense gratification. Again, saps the very vitality of human energy. And the third, Prabhupada says, over-dependence on another's mercy. And that is the problem that we have. Even in a larger scale today, because we live and we grow with this consumer mentality. The education system doesn't allow one to think. It does not allow us to grow or live with our natural products. We are always dependent, even from the toothpaste to the toothbrush, to the piece of soap. Every piece of thing that we have, we are completely dependent on someone else. And this over-dependence will sap the very vitality of human energy. So when Maharaj actually said that, it was just implementing Prabhupada's, that line in the Srimad Bhagavatam, that over-dependence on anything industrial will sap the very vitality of human energy. So as we proceed along with this on these lines, absolutely trying to be independent of anything industrial, as the years are going by, we are realizing it's just 10, 11 years. It's very short a time to do something like this, but it's just 10, 11 years as we've been doing it. But we can see that the vitality is increasing as the years are going by. We really can see the difference, the vitality of this on each one of us and the whole project as such. And everything that we're doing, the vitality is going up. So vitality of human energy is not wasted in products that we use from which someone else, on which we are dependent on someone else. And the fourth thing is artificial standards of living. again, that is another thing that saps the very vitality of human energy.
And here, that notes and yukans, summary letter in Hindi.
The very vitality of human energy is sapped away as soon as we live an artificial way of living. Everything that is artificial, anything that is natural, will give us vitality. And vitality in human energy means vitality of the human, basic human force, because it is only human life that can actually get you to self-realization. No other forms of life can give self-realization. Self-realization will only come when we have that vitality. And vitality in human life is inquiry. If the very inquiry itself is destroyed by these things. And then Prabhupada said before that, he says two things which is, how to keep good health. He says simple food and regulated habits. So with this project, we've been able to, at least understand these points and how it works. And later on in the 8th canto of Bhagavatam, I think chapter 19, verse 21, Prabhupada writes very clearly there why he wanted farm communities. So Prabhupada said, human life is connected to this verse again, and this purport. Prabhupada quotes that verse there, Nunam Pramatte Kurute Vikarma, Tedendriya Pretaya Pranoti, that human life is wasted if you try to take to sense gratification. So, and what is the purpose of human life? Is to minimize the necessities of life. And that is called Brahminical culture, or Vedic culture. And that Vedic culture, Brahminical culture, how do you do that? That is the Varnashram system, the four Varnas and four Ashramas. To minimize the necessities of life. The Prabhupada says, to live with the bare necessities of life. To learning to live with the bare necessities of life is the purpose of Brahminical culture. And then he says that, and for that purpose we've started these farms in this country. To teach people how to live with the bare necessities of life. And then two verses after that, again Prabhupada says, Brahminical culture means to learn to live with the bare necessities of life. And then he says the very purpose of ISKCON is to teach this. So Prabhupada has said in different parts the purpose of ISKCON. For example, he says in Upadeshamrita, he says the purpose of ISKCON is to have the six exchanges of love. In different places he keeps saying that. So one of the purposes, so you can make a compilation of all the purposes that he has said. ISKCON is this purpose, ISKCON is this purpose, ISKCON is this purpose. So one of the purposes is to actually preach how to live with the bare necessities of life. And that is Brahminical culture. And when we actually live that culture, then we will realize how vitality, human energy, human force, the very human force that we have, comes out of us. Krishna consciousness is not an artificial imposition in the mind. It's something natural that comes out. So it doesn't have to be acquired. When we give the circumstances, naturally this aspect comes out. That your inquiry level comes up. You start questioning. In the modern world, we're not supposed to question. Whereas in the Bhagavad Gita, the very basis of knowledge is inquiry. We have Srimad Bhagavatam, which is this inquiry. The questions are asked by the students. And the answers are given by the teacher. But what is the modern education system? So this is completely a ridiculous system. It is a non-Vedic. It has nothing to do with our system. The student's intelligence is judged by the questions he asks. It is not the opposite. Whereas now, teachers are falling over one another, try to ask very smart questions, or more and more difficult questions, so they can stop the student with difficult sort of questions. Rather, the question was, so therefore all this is, a whole completely ridiculous system. So the changeover is going to be brought about only when we apply these principles that Prabhupada has given us. And because of Maharaj's initiative, at least we've been able to see those things and understand these points from the Bhagavatam and Prabhupada's books. So therefore, this is what And therefore I always request Maharaj, please at least let me be around, hang around here somehow and continue to do some service so that I can stay with these principles and at least try to advance in this case and start to work towards that. So that's one part of it. So, should I go to another part?
Any part you like.
Okay. Do you want to do translation of this? Then you can go to the next part.
Sankshipman.
Yeah, you can directly, whatever you want to say now.
Now? लगभग 2001 के समय मैं माधव प्रभु का एज इट इज बोलूंगा मैं जब भक्तिवेदांत में काम कर रहा था वहां पे सेवा कर रहा था तो कुछ कारण से भगवान की योजना से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया तो मैं यहां पर महाराष्ट्र के जब ये प्रकल्प शुरू करने के कगार पर था तो यहां पर आया और महाराज ने ये प्रकल्प क्यों शुरू किया इसका कारण प्रभुपाद जी के कई सारे कोट्स हैं उस पर आधारित है उसमें का एक कोट है पहले स्कंद का भागवत के पहले स्कंद के चौथे अध्याय का दसवां श्लोक उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि चार चीजें हैं जो मनुष्य की शक्ति को खींच लेती है उसमें से एक है दूसरे पर निर्भर रहना और इस गोकुल धाम जैसे प्रकल्प प्रभुपाद जी चाहते थे क्योंकि ये एक मूल मुद्दा है जहां पर अपने आप पर निर्भर रहना यानी स्वयं की खेती करके वगैरह उगाना ये दूसरों पर निर्भर ना रहकर लेकिन शहरों में भी जो जिस तरह के जीवन बताया जाता है वो बिल्कुल दूसरों पर आधारित रहने वाला जीवन है और जो चीजें प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में बताई है चार चीजें जैसे अधिक इंद्रिय तृप्ति करना ज्यादा खाना तो ये सारे आधुनिक समाज में आधुनिक शहरों में बताए जाते हैं जिससे मनुष्य की शक्ति छीन ली जाती है तो ये शक्ति क्यों चाहिए क्योंकि इसी से मनुष्य जिज्ञासा करता है जब ये शक्ति रहती है शरीर में ये तेज रहता है तभी वो आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकता है लेकिन ये शक्ति जब खींच चली जाती है तो आध्यात्मिक जिज्ञासा वो कर नहीं सकता तो इसका सॉल्यूशन क्या है इसका उपाय क्या है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जितना कम जरूरत में हम जी सके उतना श्रेष्ठ है उतनी हमें शक्ति बचे रहेगी बेर मिनिमम नेसेसिटी जितना कम से कम में रह सके तो इसी को ब्राह्मणिकल संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता है तो ये ब्राह्मण संस्कृति या वर्णाश्रम भी कह सकते हैं तो ये वर्णाश्रम है जो मनुष्य के इस शक्ति को बनाए रखता है और मनुष्य को आध्यात्मिक जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़ाता है तो गोकुल धाम ये प्रकल्प मनुष्य को आध्यात्मिक जिज्ञासा की ओर बढ़ाने के लिए है लेकिन वो करने के लिए जो शक्ति रखनी पड़ती है अपने आप में वो रखने के लिए जो चीजें हैं यहाँ पर जैसे कम से कम चीजों में रहना सरल जीवन रखना ये चीजें यहाँ पर करने का प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन आधुनिक शिक्षण पद्धति जो है वैदिक पद्धति है कि जिज्ञासा करना प्रश्न पूछना लेकिन आधुनिक शैक्षणिक पद्धति में शिक्षक ही विद्यार्थियों को प्रश्न पूछ के उनका मुंह बंद करवाते हैं विद्यार्थी शिक्षक को प्रश्न नहीं पूछते इसके लिए उनकी जो जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति है वही कुंठित हो जाती है तो महाराज जी ने इन्हीं प्रभुपाद जी के तत्वों को यहाँ पर लागू करके प्रयत्न किया है कि ये गोकुल धाम उन चार प्रभुपाद ने बताए गए जो तत्व है जो नहीं करने चाहिए जैसे अधिक आहार करना इंद्रिय तृप्ति और कम से कम में जीना मत तो इनको या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना इनको यहाँ लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ महाराज जी ने मुझे मतलब माधव प्रभु कह रहे हैं कि महाराज जी मुझे यहाँ रखा है कुछ थोड़ी बहुत मैं सेवा कर रहा हूँ
सो द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इन एनी कंट्री और एनी सोसाइटी the leaders of the society are supposed to guide. Even in Krishna consciousness, we have the situation where the captain of the ship is the guru. And the guru guides the ship, our ship, back home, back to Godhead. And the purpose is that because he knows the path and he knows everything else also, so that's why the spiritual leaders guide, we're able to guide people around and take the proper path. For that reason to happen, for that to happen, the spiritual leader cannot come down and, you know, see in that ship that the engine is running, or, you know, the oars have been used, the sail has been kept properly kept, the decks have been cleaned, everyone else is eating properly, and all that. So the basic force that is there has to be by others. Then the captain of the ship can lead everyone out and back home, back to Godhead. But unfortunately, the situation in our present society, and unfortunately that has also seeped into our society, ISKCON, is that basically that the basic work has to be done by the people at the bottom. Then the leader can guide everyone through the rough weathers, because material world is a very difficult place. And get out of it, it takes a lot of endeavor. And, you know, we don't know. But that, you know, what do you call it? Because they are tattva-darshi, they know how to take you out of this material quagmire that we are living in. But if the leader himself has to do everything, you know, go and cook and maybe, you know, make sure the oars are moving and the deck is clean, then when will he get a chance to guide this? So the society is also like that. And if the society, the leaders have to give money to, like what's happening in today's society is that the central government and the state government gives money to the villagers. They give very cheap food to the villagers. So what is happening is that the villagers are not working. They're becoming more and more lazy. And there is no wealth. We are becoming poorer and poorer, even as a nation. So, and what the government is doing, they're selling off all these, you know, mines that are there in the country, all the wealth that is there, they're selling it off. And then with that money, they're making, buying some cheap rice or cheap food, and then giving it to the local villages. And because it's a whole voting system. Unfortunately, something similar is also happening with us here, even in ISKCON, is that we have our big leaders, and they go out and collect the money, or, you know, get the Lakshmi, and we just spend it. But it should be the opposite for a good and strong organization, is that the wealth should be generated at the bottom. And then the leaders are free to actually guide the society in the proper line. But we sit down and we wait for our plate to come in front of us. And then we hope that we'll get it every day. But we're not doing anything much about it. We have to see that our plate gets filled. It's not their job. Their job is to guide us out of this material world. So that they will do. But if we tell them that you fill my plate too, then how they will guide us? So therefore the problem comes here. So therefore we need to understand very sincerely and very properly that the wealth has to be generated from the bottom. That makes a very strong organization. That makes a very strong community. That makes a very strong society. And that also makes very strong individuals. That also makes a very strong spiritual cause, because then the spiritual leaders can guide those who are seeking spiritual life very nicely. They have the ability to do that. And if we don't do that, then we will remain, you know, all the time looking at them, not for spiritual guidance, but we will look at them continuously for, you know, to fill our bellies. And therefore, the whole purpose of spirituality finishes. And the spiritual organizations which have come into this kind of a situation have always failed, or they've become very mundane after some time. Because the whole leadership is not about spiritual upliftment, but the whole leadership is all about, you know, providing material necessities. So therefore, we will have to move on. So ISKCON has to move on to this level and guide the whole world, then we have to move on to this level. The wealth has to be generated at the bottom. And then the leaders can guide, you know, on a spiritual. The spirituality is a guidance for us. Even animals are filling up their bellies, right? That's what Prabhupada is saying. Even animals are filling up their bellies. So why should we not be able to fill up our bellies? Why should we depend on leaders for filling up our bellies? The leadership is not for filling up bellies, but leadership is for guidance on the way back to the land. So this is what is again another thing that we have to attempt, and we are trying. Unfortunately, because we've not been trained at an early age to do enough hard work and to produce the wealth, but we are trying to do that here, because the only source of wealth actually for this whole world is the first 6 inches of the soil. The whole world lives only on the first 6 inches of the soil. And only if that is productive can the world survive. The world is surviving only on the first 6 inches. We can have big cars, big cities, big things going on, but if there is no food, who's going to live anywhere? What would happen if we didn't have food here and we all invited all of you here? If there was no water? Even the water harvesting is actually done by the first 6 inches of the soil. So everything depends on the 6 inches. Therefore, Prabhupada again and again quotes this verse from the first canto again. Sarva kama dugha mahi. That mahi, or the earth, is the source of all our necessities. All our needs are fulfilled only by that. So therefore, this whole Gokuldham project will not be successful if we are not able to make this first 6 inches of the soil productive. It means we don't make the land productive. So this is where we are struggling right now, because we don't have that experience. At least I don't have that experience. And we have to struggle with a lot of other things before this. But somehow we are hoping to do that. I don't know when and how, but we're trying hard. Trying a little best to make that, and then relieve Maharaj of the burden of trying to maintain us here, and then go ahead with actual spiritual activity. Because as long as the leadership is not, freed from that activity, then they cannot proceed ahead. They cannot take us ahead. And the whole purpose of Krishna consciousness is to make spiritual advancement. And spiritual advancement comes by associating with devotees, advanced devotees, specifically for the purpose of spiritual enlightenment, not for the purpose of filling up our plates.
कठिन है तो दूसरे भाग में माधव प्रभु जी ने कहा कि एक तत्व बता रहे थे वो कि जैसे नौका होती है उसमें कैप्टन होता है, तो कैप्टन का प्रमुख काम है कि नौका को समुद्र में दिशा देना। लेकिन मान लीजिए जो निचले लोग हैं काम करने वाले नौका पे, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो नौका के कैप्टन को नीचे आके देखना पड़ेगा पेट्रोल है कि नहीं, सब लोग खा रहे हैं कि नहीं। तो इसके कारण से जो कैप्टन का मूल काम है दिशा दिखा के नौका को आगे लेके जाना, वो नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति पूरे निचले कामों में लग रही है। इसीलिए नौका में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनको चाहिए कि वो कैप्टन को छोड़ दे, इसलिए ताकि वो नौका को आगे ले जाए, न कि इसके लिए कैप्टन का इस्तेमाल करे कि उनकी उनके लिए भोजन का प्रबंध करे या उसमें ईंधन है कि नहीं ये देखने के लिए। ये सारी चीजें निचले लोगों को करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से दुर्भाग्य से आज इस्कॉन की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जो निचले लोग हैं, मतलब सर्वसाधारण साधक हैं, वो लीडर्स को डोनेशन कलेक्ट करने में वगैरह इच्छा करते हैं, वो अपने लिए भोजन जुटाने के लिए इच्छा करते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े सक्षम लीडर्स हैं आध्यात्मिक संस्था में, वो इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, उसको मार्गदर्शन दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत से ऐसे निचले लोग अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो ऊपर के लीडर्स हैं उनको वो छोटे छोटे कामों में ध्यान देना पड़ रहा है। तो होना ये चाहिए कि हम लीडर्स को फ्री छोड़ दें ताकि वो इस आध्यात्मिक नौका को आगे ले जाएं। लीडर्स को, जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस संस्था के, उनको हमें उनकी तरफ से आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए है, लेकिन और ये संस्था चलाने के लिए बाकी जो चीजें लगती हैं, जैसे धन है या और भी कुछ चीजें हैं, वो हम ही लोगों को करना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो ही जो लीडर्स हैं वो हमको आगे लेके जाएंगे। जैसे माधव प्रभु कह रहे थे कि जो धन है वो बॉटम में, नीचे, निचले हिस्से में उत्पन्न होता है, आज भारत की भी ऐसी कुछ परिस्थिति है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करते हैं, जो गांव है उनको पैसे दिया करते हैं, तो गांव वाले आलसी हो रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, धन वहां उत्पन्न नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास धन आएगा कहां से, इसलिए वो खाने बेच रहे हैं और जो भी जरूरी चीजें उनको बेच के कैसे वैसे करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और गांव में पैसा वितरित कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, पैसा नीचे उत्पन्न, धन नीचे उत्पन्न होना चाहिए और उसका उपयोग लीडर्स इस देश को या इस संस्था को आगे लेके जाने के लिए करना चाहिए। तो गोकुल धाम का प्रकल्प इसी को उद्देशित करके रखा गया है। गोकुल धाम ये निचले स्तर पर धन उत्पन्न करेगा, धन का अर्थ है ये अन्न वगैरह ये सभी, तो ये निचले स्तर पर अगर उत्पन्न हम कर रहे हैं तो ऊपर के जो लीडर्स हैं वो इस आध्यात्मिक संस्था को बहुत अच्छे से और तेजी से आगे की तरफ ले जा सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। तो गोकुल धाम का उद्देश्य है कि बॉटम में निचले स्तर पर धन को उत्पन्न करना। माधव प्रभु ये भी बता रहे थे कि दुनिया ये जमीन के पहले 6 इंच के मिट्टी पर चलती है, बस मतलब उसी में से धान आता है, क्योंकि हम धान या अन्न पे जीवित हैं, तो ऐसे कहते हैं कि दुनिया सारी जमीन के ऊपरी सतह 6 इंच पे जीवित है। तो गोकुल धाम भी प्रयत्न कर रहा है इस 6 इंच का इस्तेमाल करके धन या अन्न उत्पन्न करने के लिए। अब तक बहुत कड़ा संघर्ष रहा है लेकिन प्रयत्न जारी है, और इतना मैं समझ पाया। अरे
क्वेश्चंस दे के नास, प्रश्न आपको पूछने हैं तो माता प्रभु से पूछ सकते हैं। आराम से चलने दीजिए, जितने प्रश्न है पूछिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
अभी क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे मतलब द्रव्य संस्था में तो आ गए और ऐसे प्रशिक्षण बाहर से भी है, और वैसे मंदिर में आने के बाद तो मंदिर में आने के लिए प्रेरणा तो है ही, सुविधाएं तो और जो भी आ जाती है भोजन आदि जो भी, तो मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आदत तो बूढ़े होने के बाद आश्रम में आ गए तो उसको कैसे करेंगे।
When we bring new people to this movement, obviously we provide them good facilities and things like that, because obviously, you know, they are suffering in the world outside, and then we offer them. But that should not remain as the basis for our later on stay. And we have to tell people that, I mean, tell them the truth, that if you want to make a spiritual advancement, then the spiritual advancement depends on our hard work. It is not some, you know, what do you call it, that you get things very easily. Spiritual advancement is tough. And for that, you have to do something. And until unless we don't realize that we have to do something hard for spiritual advancement, it's just not going to come on our way. It is not just something that you purchase in a store. It has to be worked for. And the work has to be done. Until unless we don't leave our leaders free to do. Prabhupada also wanted that. He always wanted that. You give me away, leave me away from management. Let me do the work of translation, which he thought was the most important activity. And even during Srila Prabhupada's times, ISKCON grew not because Prabhupada was making money and giving to others. It was because the devotees at the bottom were distributing books. They were distributing, recruiting people, the recruitment of people, the distribution of books. The wealth was generated at the bottom. So therefore, Prabhupada was able to move. In 11 years, he was able to move the ship of ISKCON from one side to another side. He was left free with all these things because the enthusiasm of the devotees below was so great. So till that time, Prabhupada was struggling. But once the books started going on, it just, you know, boomed. Then Prabhupada was able to guide whatever money was coming to his book fund. He was able to guide them here and there, build temples wherever it was required. You know, he knew where to utilize the wealth. Okay, now build temples here, build this here, do that there. He was able to do those things. So until unless we don't realize that, you know, we don't take the responsibility of our own lives, we're not going to go very far. And the organization will also not grow. if the recruitment has to be done by the leaders, money has to be collected by the leaders, management has to be done by the leaders, then how will they, you know, they are not free to grow the institution. They are not free to grow the institution. They have tremendous capacities, that is why they are there. So they will be able to grow the institution only when we do our groundwork very nicely. Otherwise, and we need to re-educate ourselves, so we have to rethink the whole policy, what we are doing, how we live it. You want to translate that? Or you want to translate? Maybe you can only translate.
Hindi mein prashn ho
chahiye. We asked in Hindi.
Yeah, actually in Hindi.
To prashn ka uttar dete hue Madhav Prabhu ne kaha ki adhyatmik pragati बिना श्रम किए हुए नहीं आएगी. हालांकि शुरुआत में जब कोई हम व्यक्तियों को लेते हैं इस आध्यात्मिक आंदोलन में और उनको शरणागति भी देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि शुरुआत में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक अगर वास्तव में प्रगति करनी है तो कष्ट करना पड़ेगा, बहुत कष्ट से और तीव्रता से आगे बढ़ना पड़ेगा. लेकिन फिर इस उत्तर को भी पिछले मुद्दे से ही माधव प्रभु ने जोड़ा कि फिर वही समस्या आती है कि हम अगर जो अग्रणी लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको भी ये छोटे छोटे कामों में हम लगाएंगे तो मुश्किल होगा सभी लोगों को एक साथ आगे ले जाने के लिए. तो हमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको फ्री छोड़ना चाहिए ताकि वो बड़े बड़े काम करके आगे ले जाएं इस आंदोलन को. जैसे प्रभुपाद जी जब आंदोलन की शुरुआत किए तो हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ उनको पैसों की वगैरह व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन एक बार जब उनके कुछ शिष्य बने और शिष्यों ने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली धन इकट्ठा करने की वगैरह पुस्तक वितरण से, तो उस तो प्रभुपाद ने अपने आप को इस धन इकट्ठा करने जैसे ये छोटे छोटे निम्न स्तर के लेकिन जरूरी इनसे अपने आप को छुड़ा लिया और वो बड़े काम किए. कैसे काम? कि जो धन आता था उनको उन्होंने अलग अलग जगहों पर मंदिर बांधने के लिए इस आंदोलन को विश्वव्यापी संस्था बनाने में उपयोग किया. तो कहने का उद्देश्य है कि जब तक इस आंदोलन के जो प्रमुख अग्रणी व्यक्ति हैं, जो लीडर्स हैं, उनको जो सर्वसाधारण साधक हैं फ्री नहीं करेंगे, उनको इन छोटी छोटी बातों में ही उलझा के रखेंगे, तब तक साधक भी या संस्था भी आगे नहीं बढ़ सकती.
एंड देन वी विल बी आफ्टर सम टाइम वी विल फील व्हाट्स हैपनिंग, वी नॉट गोइंग अहेड एंड we don't have this resource, that resource, and then there is a depression amongst the people. People, how the organization is not growing, people are not coming. So this is the result of that.
तो इसी कारण से जब प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो ये धन इतना इकट्ठा करने की आवश्यकता में वो लग जाते हैं तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ता है. तो इसके कारण से आंदोलन में रहने वाले सोचते हैं अरे आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है. तो कभी कभी उनको मानसिक तनाव होता है, उनका संस्था के प्रति जो भाव है वो बदलने लगता है. तो इसका प्रमुख कारण है जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस आंदोलन के उनको बड़े काम करने के लिए छोड़ना चाहिए और छोटे छोटे जो काम है निचले स्तर के वो सर्वसाधारण साधकों को ही करना चाहिए.
And also it creates one more big problem. If tomorrow something goes wrong with these big leaders or we are not able but some reason or other they're not around, then the whole organization will collapse.
और एक समस्या इसके कारण आती है जब हम इतना ज्यादा निर्भर रहते हैं प्रमुख व्यक्तियों से, लीडर्स पर, वो ये कि
for material necessities, for the basic material necessities,
सर्वसाधारण आवश्यकताओं के लिए भी जैसे अन्न है, धन है, इन आवश्यकताओं के लिए भी जब हम बड़े लीडर्स पर ही आधारित रहते हैं तो होता ये है कि अगर उन लीडरों के साथ कुछ हो जाए या वो लीडर्स अपना समय हर एक सेंटर्स को नहीं दे पाए तो ये आंदोलन बहुत भारी मुश्किल में आ
जाएगा. So the first question is where do projects like these help in that part in that progress where we can achieve perfection of life by the 9 forms of devotional processes, first part. And second part, when you say that leaders are, if you are saying leaders are busy or they are, maybe how they are doing it, I mean, I am not going to understand what you are trying to say to me.
First part is translate the question.
प्रश्न ये पूछा गया है कि हमारे जो भक्ति का प्रमुख आधार है नवविधा, ये श्रवण कीर्तन वगैरह करना, तो श्रवण कीर्तन ये करने के लिए ऐसे प्रकल्प क्या भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि श्रवण कीर्तन हम शहरों में भी रहकर कर सकते हैं, तो ये प्रकल्प जो मूलभूत भक्ति के अंग है उसके लिए क्या किरदार निभाता है। और इनका दूसरा प्रश्न था कि क्या अर्थ है कि जो प्रमुख संस्था के प्रमुख लीडर्स हैं वो लोग छोटे निम्न स्तर के कामों में जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ण करने में लगे हुए, इसका अर्थ क्या है, ये मैं समझ नहीं पाया, तो इसका विस्तार कीजिए।
Okay, the first question is, the first part is that spiritual life advancement depends on hearing and chanting. Do you only hear and chant? Can you live on only hearing and chanting?
No.
Okay, so where does that come from?
Yeah.
All this is dependent on something very cheap, cheaply available, fuel, water. The systems that support us, support human life, is being compromised at this stage. And therefore, it is this kind of a system, I mean, is not going to last. It is already falling apart, and instead of getting food, you're getting poison. Okay? We were just discussing today, ahara shuddho sapta suddhe, sapta suddhe dhruva smriti hi, dhruva smriti sarva granthinam vipramoksha. If ahara is not shuddha, then ahara shuddho sapta suddhe, then existence becomes purified. If existence is not purified, only when existence is purified can your memory be very sharp. And only with sharp memory can you break down, cut down the knots of material existence. So if your existence is not pure, how can you break down or cut the, how can your memory be sharp? Your memory will not be sharp because it saps the very vitality of human energy. You will ask the same questions again and again because you'll forget. You won't remember what I studied. Most importantly, you won't remember Krishna. Krishna consciousness is not something artificially imposed in the mind. It just naturally comes out. So, as I said again, let's go back to the very first canto again. Human energy vitality is sapped by the four things. Overeating, right? If you overeat, can you remember Krishna? Can you hear and chant properly? No. If you do over-sense gratification, can you hear and chant properly? No. Similarly, depending on someone another's mercy for your livelihood, you cannot have inquiry. You cannot ask questions. Our questions will not be pertinent and proper because smriti is not there. So same things, we'll keep on asking some frivolous little questions and things like that. To break the path of repetition of birth and death, you really have to inquire, just like Parikshit Maharaj inquires. You have to have questions of that type. Your mind has to be of that level of inquiry to really know, where am I going? Am I going on the right path? Is this the proper way? Am I taking the thing? You know, you've read so many books so many times. Don't forget, you think you can remember everything and use them in your life? No. Why? Because, human energy is lost when you're dependent on someone else's mercy. And most of the times, by being dependent on other people in the cities for our basic necessities, we are compromising our standard of Krishna consciousness. How? Let me give you one simple example. Very simple example. What are the four things that we promise when we... four or five things that we promise when we get initiated?
No intoxication, no gambling.
Most of the soaps, toothpaste that we use outside have stearic acid, which is a derivative of tallow, killed animals. Right? Everything that you see around... ice creams have, I remember once we had this whole thing in the ashram, ice cream was being distributed and we looked it out and then we found out E471, E413, E406. And what are these E414? 471 was derived from pig fat. like that everything. There's a whole big list if you want of how many things that we use on a day-to-day basis, including printing industry uses eggs. Practically in every field of activity there are things that are used which is either killing animals or is a result of killing animals. And another point, first canto, chapter 11, verse number 13. Prabhupada says very clearly that mills and factories supported by slaughterhouses are a necessary paraphernalia for the modern metropolis. I repeat, mills and factories supported by slaughterhouses are a necessary paraphernalia for the modern metropolis. It is because of slaughtering cows that we need to buy everything that is normally available, very easily available if the cows are around. Okay, because we've cut out cows, so now we need all these industries to provide what the simple animal does to us, provides all our necessities. Number one. Number two, Prabhupada says, mills and factories produce a demoniac mentality in the working class. Produces a demoniac mentality in the working class. So we are saying that people are working in industries, it's all okay, very nice, but it is creating a demoniac mentality in the working class. And we can see it. Every year, is it getting easier to preach Krishna consciousness in the cities? This is what. And then, thirdly, whether you like it or not, the mass media and everything is growing every day. And then we are being exposed on a daily basis to further degradation of the moral and the ethical fabric of the nation, of every human being. Now it's very easy. I mean, when we were small, to see, you know, people, you know, dressed in very shanty clothes being, you know, displayed in public, it was like we never saw that. Now it's very common in Indian cities. And do you think that is going to help us to do jeering and chanting? Which will you remember more? You know, those scantily dressed people, or you remember the Shravanam, Kirtanam and all that? We won't. It is mechanically trying to do Shravanam, Kirtanam. Because we have to admit that we are not so strong to be leaders. Maybe the very big people who are very spiritually very strong, they may be able to tolerate because they've gone beyond it. They've transcended the basic modes of material nature. But those who have not, then what happens? Can a sadhaka tolerate all that and live? Is it okay to see all that and live? No. So doing basic hearing and chanting requires some basic thing. And thirdly, you have to get milk. Where is the milk? What you're getting is not milk. They're stealing it from the cows. Prabhupada writes in the third canto of Bhagavatam, a Shudra milkman steals the milk from without letting the calf drink. For what Prabhupada says cannot be mentioned in the pages of the Bhagavatam. For reasons which Prabhupada says cannot be mentioned in the pages of the Bhagavatam. Where is the milk? It's all stolen from calves. Calves are dying. And then we are supposed to do cow protection. You think the milk which by making the cow suffer, you know, is going to be nutritious milk which is going to support your finer tissues and give you Shravanam Kirtanam? No, it is her pain that is coming out because she doesn't see her calf. So what comes out is not milk that nourishes her. It is a poison, deadly poison. Therefore, this is not going to, you know, until and unless Prabhupada is very clear that if we want to preach to the masses and then to make people in thousands devotees, he says you have to make these communities successful. The present system of preaching, it is basically a philosophical way of preaching, using philosophy, convincing people on the basis of philosophy. He says, Prabhupada said that this will bring people only in 10s and 20s. But if you want thousands to come, he says, Paropokar, then you have to implement this system. Make this farm community successful. I don't know how, but these are statements in Prabhupada's books. You can read them and say, he's not said it once by mistake. He's repeated this at least 3-4 times it is recorded that he's repeated this. If you want mass preaching, it's only it. Okay, so the first question.
तो जो प्रश्न पूछा गया था कि श्रवण कीर्तन ही मुख्य है तो गोकुलधाम जैसे प्रोजेक्ट्स क्यों चाहिए तो उसके उत्तर में प्रभु जी ने कहा कि क्या व्यक्ति सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रह सकता है सिर्फ श्रवण कीर्तन ही क्या उसको कुछ और भी चाहिए तो कहा कि उसके लिए आहार चाहिए रहना ठीक चाहिए तो वो आहार कहाँ से आएगा क्योंकि श्रवण कीर्तन के साथ साथ आहार भी चाहिए क्योंकि आहार ये बहुत जरूरी है और खास करके शुद्ध आहार आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध है मतलब अगर आहार शुद्ध है तो अस्तित्व शुद्ध होगा और अगर अस्तित्व शुद्ध है तो उसकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी और ऐसे स्मरण से वो आध्यात्मिक जिज्ञासा करके अपने कर्म ग्रंथियों को काट सकता है ये प्रक्रिया है लेकिन मूलभूत चीज जो आहार है वही अगर विषैला है इस आधुनिक समाज में तो श्रवण कीर्तन करने के लिए भी बहुत सारी बाधाएं होंगी इसलिए हालांकि श्रवण कीर्तन ये प्रक्रिया है लेकिन वो ठीक से करने के लिए ऐसे प्रकल्प जिसमें आहार शुद्ध है वातावरण शुद्ध है ये बहुत जरूरी है श्रील प्रभुपाद जी के एक कोटेशन कहा कि पहले स्कंद का 11वें अध्याय का 13वां श्लोक जहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक जो सभ्यता है या आधुनिक शहर है वो प्रमुखतः कत्तल खानों पर चल रहा है प्रमुखतः कारखानों पर चल रहा है लेकिन कारखाने ये कत्तल खानों पर ही चल रहे हैं जैसे कुछ भी अगर आप खा रहे हो या उसका उपयोग कर रहे हो वो किसी ना किसी तरह से इन कत्तल खानों से जुड़ा हुआ है जैसे एक साधक जब दीक्षा लेता है तो 4 नियमों का पालन करने की शपथ लेता है तो उसमें से एक है कि वो मांसाहार नहीं करेगा लेकिन जाने अनजाने में वो उसमें लग ही जाता है जैसे हमारा साबुन है या फिर जो टूथपेस्ट है इन चीजों में कुछ ऐसे प्राणियों के मांस के चीजें डाली हुई रहती हैं तो हम उन नियमों तक को पालन नहीं कर सकते ठीक से जब तक कि हमारे पास इस तरह का प्रकल्प ना हो और दूसरी बात प्रभु जी ने कही कि प्रभुपाद ने जो पहले भी कहा था कि दूसरे पर निर्भर रहना तो हम जब दूसरों पर निर्भर रहते हैं मतलब किस पर निर्भर रहते हैं जो कारखाने हैं या जो शहरी मानसिकता के लोग हैं उन पर निर्भर रहते हैं लेकिन ये निर्भरता कभी भी टूट सकती है क्योंकि ये जो कारखाने वगैरह हैं ये बहुत दिन नहीं चलने वाले हैं और हम जब हमारी साधना को हमारी भक्ति को इन चीजों पर आधारित करते हैं तो उनके साथ साथ हमारी हमारी साधना भी टूटने की संभावना होती है प्रभुपाद जी के और एक कोट कहा उन्होंने कि मिल्स और फैक्ट्रियों की वजह जो काम करते हैं उसमें उनकी मानसिकता राक्षसी बन जाती है इसीलिए आजकल आधुनिक समाज में बहुत राक्षसी मानसिकता के लोग हैं और इसी कारण से प्रचार करना भी दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है और जब हम बाहर जाते हैं जो होर्डिंग्स और बैनर्स देखते हैं या फिर लोगों को देखते हैं उनका इतना चारित्रिक पतन हो चुका है कि हम हमारे चेतना को भी नहीं ठीक से रख सकते तो इसलिए प्रभु जी कह रहे थे कि जब हम हालांकि श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन आसपास वातावरण ऐसा है ऐसे कम कपड़ों वाले लोग दिखाई देते हैं तो इनको देखते हुए अगर हम श्रवण कीर्तन कर भी रहे हैं तो क्या हम कृष्ण को स्मरण करेंगे क्या ये चीजें स्मरण में आएंगी तो श्रवण कीर्तन और स्मरण करना भी कठिन है तो चौथी बात है कि रूपात का कोटेशन कहा फिर से उन्होंने हालांकि कोई कह सकता है कि आधुनिक शहरों में भी दूध मिल सकता है लेकिन क्या ये दूध है क्योंकि जब गाय को केवल दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूध नहीं बल्कि उसका उसकी जो दर्द है वो दर्द ही दूध के रूप में आता है वो विष है वास्तव में तो मूलभूत चीज जो दूध है अन्न है वो तक हमें नहीं मिल रहा है तो श्रवण कीर्तन कैसे होगा ये सारांश था
Second part is that as devotees of this movement, in fact, when I first joined, I was told to run a temple. I mean, you know, keep going to the temple. there was not even a single paisa, not even 1 rupee in the bank account. Only the minimum balance was also non-managed. So I had to go out on the streets and book the street books every day to basically bring and run the temple. Okay, if I missed going out on book distribution, I would not be able to. But that is what kept us going all these years. That because we worked hard and we connected with the temple, we connected with the Prabhupada's mission, we understood what it, only when you go through the difficulties of actually the practical difficulties of running the movement, then you understand what is Shravanam Kirtanam all about. When you have nothing, no difficulties, you just were supposed to do Shravanam and Kirtanam. There's no difficulties whatsoever around you. So I had to go out, distribute books, and with that money, I had to do a Sunday feast of 150 people at that time. I had to cook the whole feast also. So I had very little for myself. I would buy the cheapest vegetables in the market, the cheapest rice and whatever it is, dal, and then I would live. But that gave us a taste for, for this movement, for the Sankirtan movement, for the books, connected us to people. And we understood and we valued the leaders, what they are doing for us. And then we saw what difference it makes when I go and try and preach. How many people I can really preach? What can I do? And when they come and speak, it makes so much of a difference. So, if we can free them from doing all these things, giving me my basic necessities, for my basic necessities, I should work. Why should someone else pay for me so that I can chant in here? That's my personal thing. Until unless we don't do this, you will not appreciate what you're getting. Only when you go through the hard labor, then you'll appreciate what you're getting in terms of your spiritual inputs. We didn't come to the movement because we got facilities. We stayed in the movement because we had spiritual guidance. We stayed in the movement because we valued the spirituality we got. So I always remembered myself as, I've been saved from the gutters. Otherwise, probably I would have been spending my time in bars and restaurants and things like that. So I'm doing this service, which is keeping me away from that and giving me good association. And then such strong individuals are made who can become leaders for the future. But if you just depend on, the material necessities, if they're not there, then I won't stay in the temple. Then you're not here for a spiritual reason. We came here because we got spiritual guidance. We've got spirituality. They've protected us from material downfall. So we're not here because we are hungry or, there's no one to give us anything. No, we have to work hard. By working hard, then you make your basic advancement. If you don't, then you don't get your basic advancement. Basic advancement is to depend on Krishna. And that you learn when you're on the streets, when you're doing this hard work, that you have to depend on Krishna for everything. I still remember, I think, those years of initial years of difficulty were there. I was sometimes thinking, what the hell? Why should I do all this? Maybe I should just go back home. But then if I remembered, oh, home, my God. They'll involve me in getting married and then put me into all these things. All these things will happen. No, I'll stay back. Because this association is so important. I could get to serve Krishna. I can see Krishna in the morning, evening, taste Krishna prasadam. Maybe it's a little difficult life, no problem. But I had to do it. And Krishna, another thing that I found out is that if you surrender, Krishna takes care of you. There's never a day. I remember I left and arrived in those temples without a single paisa in my pocket. And I'm still here. And never was a day left when I didn't get 2 meals to eat. I always got. So that increased my confidence that if I simply serve Krishna, and tasseva hetu prayateta kovido nalabhyate bhavata gabhira ramasa. The life's thing is not to get material and say, that is already destined for us, don't worry. We have to attain spiritual life, not material life. So because of not understanding that, we think, oh, we need certain things. I need a particular type of slippers only. Then only I'll wear. Otherwise, if the temple doesn't give me that particular type of slippers, I will not wear. I'll make something. I will not do my service. I didn't have that opulence to do say such things. I had to live the way took us, because I valued spiritual life and the guidance that I was getting, the association that I was getting. I did go back for some time, you know, back to the university, but then I realized it's useless going back there. It's better to struggle on the streets selling books than to go back and, you know, live in those homes, because then your mind gets, your whole life gets diverted into something else, very, very ridiculous things. So we have to value these people. If you want to value these people, then you have to take spiritual guidance from them, not material. And not only material, yeah, they'll give you material guidance, but not material things from them only. And live on because they are giving us material things. Does it make sense?
जो दूसरा प्रश्न था वो था कि ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस आंदोलन के, उन पर वो हमारे जो मूलभूत चीजों को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है और ऐसा क्यों नहीं करने देना चाहिए उनको, उनको सिर्फ आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए उनकी तरफ जाना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो प्रभु जी इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि वे जब ज्वाइन हुए थे कुछ बहुत साल पहले, तब उनको एक मंदिर चलाने का उत्तरदायित्व दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी उनके पास नहीं था। तो हर रोज मंदिर चलाने के लिए उनको बाहर जाके किताबें वितरित करना होता था, और किताब वितरण से जो पैसे आते थे उससे वो मंदिर चलाते थे, और संडे फीस भी इसी तरह से चलाते थे। तो इससे हुआ ये कि श्रवण कीर्तन सिर्फ श्रवण कीर्तन करने से नहीं आता, जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम परिश्रम करते हैं इस आंदोलन के लिए, तब उसका साक्षात्कार होता है। तो जब उन्होंने इस तरह से बाहर जाके किताब वितरण करके मंदिर चलाने का उत्तरदायित्व तो अच्छे से निभाया, तो ये परिश्रम किया, तो उनके श्रवण कीर्तन में भी साक्षात्कार आया, और ये भी साक्षात्कार हुआ कि हमारे लिए हमारे जो लीडर्स हैं, हम हमारे जो गुरु हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव हृदय में आया। ये कृतज्ञता का भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम इस आंदोलन में आंदोलन के लिए श्रम नहीं करेंगे। जब हम आंदोलन के लिए श्रम करेंगे तब समझ पाएंगे कि हमारे गुरुजनों ने और इस आंदोलन ने हमको कितनी बड़ी चीज दी है। कुछ समय ऐसे भी लगता है कि हम वापस चले जाए, यहाँ पर बहुत श्रम है, यहाँ पर बहुत कष्ट है, लेकिन वापस चले जाने के बाद भी कुछ समय प्रभु जी भी कह रहे कि यूनिवर्सिटी वो वापस पढ़ने चले गए थे, लेकिन तुरंत उनको समझ में आया कि इससे अच्छा है कि मैं रस्ते पर खड़े रहकर किताब वितरण करके ये जो श्रम है वो करूं, ये इससे बहुत लाभदायक है। तो जब हम मूलभूत चीजों के लिए श्रम करके मंदिर चलाने की सेवाएं वगैरह करते हैं, तो एक तो हमें साक्षात्कार होता है श्रवण कीर्तन का, दूसरा गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, और जो प्रमुख व्यक्ति हैं, गुरुजन हैं, वो बड़े काम करने के लिए उनके पास समय बच जाता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति इस तरह से वो आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए साधक को गुरुजनों के पास, जो लीडर्स हैं, उनके पास आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए चाहिए। हालांकि वो भौतिक चीजों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन भौतिक मूलभूत चीजें उनके पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो जब इस तरह से कोई व्यक्ति रहता है गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ बनकर, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि मैं पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हूँ। तत्सेव हेतु प्रयते तो कोई दुखी, जो भी चीज मेरे नसीब में आनी है वो आनी ही है, वो मुझे ऑलरेडी प्राप्त होनी है, तो उसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों का साक्षात्कार उसको होता है। तो सारांश ये है कि जो सर्वसाधारण लोग हैं उनको इस आंदोलन के लिए कष्ट करना चाहिए, उससे श्रवण कीर्तन का साक्षात्कार भी होता है और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता होती है, और जो लीडर्स और गुरुजन हैं वो इस आंदोलन में आगे ले जाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहता है। Can I do line by line once you say English, then
I think this is better.
Yeah.
You are doing good job. वो फ्लो रहता है ना, फ्लो, एक बार मन विचार है वो फ्लो रहता है, बीच बीच में रोकना पड़े तो फ्लो टूट जाता है।
Last line?
Krishna consciousness can spread by the agrarian revolution. Agrarian means farmer.
कृषि प्रधान.
तो ये आंदोलन अभी अगले कदम पे जो बढ़ेगा, क्या वो कृषि क्रांति से बढ़ेगा?
No, it will not. It will grow only when you we hear and chant, and we take to the process of pure chanting. Then only it will grow. But to do pure chanting, you need these things.
प्रभु जी ने उत्तर दिया कि नहीं, आंदोलन केवल कृषि क्रांति से नहीं बढ़ेगा, बल्कि शुद्ध श्रवण और कीर्तन से ही आगे बढ़ेगा. लेकिन शुद्ध श्रवण और कीर्तन करने के लिए ये कृषि क्रांति वगैरह आवश्यक है. इसीलिए
One more thing. Human life is not meant to work very hard. Okay. You're not supposed to work very hard. Prabhupada calls them pungent activities or ugra karma. So, if we don't do krishi activities of krishi, I mean, work on making things for the land, from the land, producing from the land, then you'll have to do ugra karma. So, there is plenty of time to hear and chant if you work on the land and make it available. You know, it is seen, we have seen it, of course, because systems are not set and we've not been trained or skilled in it. We're finding it difficult to do, but actually it just takes 3 to 4 months of the rainy season. You can grow all your necessities. So, human life is not to work like a donkey, but to, you know, spend time hearing and chanting and worshipping the Lord. For that time is only available if you are based on the natural system of which Krishna has made. If you're not based on it, then you'll have to take to pungent activities. Okay. And secondly, that is one answer. Second answer to it is that the present day activities that we see, the world that we see, is all growing on cheap oil, cheap water, cheap minerals, cheap grains, everything on cheap stuff, and we are running out of it. Okay, we've already run out of oil in several places, and all this accelerated growth that we've seen and this civilization that we've seen is just barely 100 years old, and it is again toppling down. So where are we going to go? The only sustainable way to live on this earth is by growth.
तो उत्तर में प्रभु जी ने कहा कि हालांकि ये आंदोलन श्रवण कीर्तन पर आधारित है, लेकिन श्रवण कीर्तन ये शुद्ध आहार और कृषि व्यवस्था इस पर निर्भर है, इसीलिए चाहिए. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मनुष्य जीवन जो है वो उग्र कर्म के लिए या गधे जैसे काम करने के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए है. लेकिन ये आधुनिक सभ्यता में कुछ इस तरह से वातावरण हो गया है कि लोगों को उग्र कर्म बिल्कुल करना ही पड़ रहा है और गधे जैसे काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, कृषि नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए उनका जीवन का बहुत सा समय इस उग्र कर्म में और बहुत सा काम करने में ही चला जाता है. जो पारंपरिक पद्धति थी कृषि पर आधारित, उस पर यह होता था कि साल में 3 से 4 महीने व्यक्ति काम करता था और बचे हुए समय में वो आध्यात्मिक कार्य करता था. तो अगर व्यक्ति कृषि को केंद्रबिंदु रखते हुए कार्य करे तो उसका बहुत सा समय बचा रहेगा. हालांकि गोकुलधाम में आज, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कृषि थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो इसके कारण से हमारा भी बहुत समय उसमें जा रहा है. लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो कृषि पे आधारित जीवन पर सभी लोगों का यहाँ पे रहने वाले बहुत सा समय बचता रहेगा. तो ये एक उत्तर है. दूसरा उत्तर था कि आधुनिक समाज ये बहुत ही निम्न स्तर के चीजों पर अपने आप को आधारित करके चुका है, जैसे निम्न स्तर के ऑयल, तेल,
सस्ते
तेल या सस्ता भोजन, सस्ता अन्न, इस पर. तो ये बहुत दिन टिकने वाला है नहीं, क्योंकि ये लगभग 100 साल से ही शुरू हुआ है. इससे पहले ऐसे नहीं था. इससे पहले लोग कृषि पर आधारित या कृषि से संबंधित, जमीन से संबंधित जीवन यापन करते थे, लेकिन पिछले 101 सालों में इस तरह से बदलाव आया है. ये कृत्रिम जीवन शैली तैयार हो गई है जो बहुत जल्दी टूटने वाली है और कई जगहों पर टूट रही है. कई जगहों पर तेल की कमी है, तेल नहीं मिल रहा है इत्यादि. तो ऐसे टूटने वाले पद्धति पर हम अपने भक्ति को निर्भर नहीं कर सकते, इसीलिए कृषि जैसे पारंपरिक जो पद्धति है उस पर निर्भर करके हम हमारे श्रवण कीर्तन को सुदृढ़ कर सकते हैं।
Just give you an example of how we're living on cheap energy. In Pakistan, air conditioners are completely banned because they cannot afford it. There's not enough electricity to run air conditioners and at the same time give people electricity. In Delhi, 60%, I think, or no, 40% of the city's electricity is consumed by air conditioners. So it is on very cheap things that we are living. If you want to live, everyone wants to live on it, it's not very cost.
और एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आधुनिक समाज टूटता जा रहा है। पाकिस्तान में वातानुकूलित जो एयर कंडीशनर हैं, उनके लिए मनाही है क्योंकि वातानुकूलित मशीनरी चलाने में जो खर्चा आता है वो पाकिस्तान नहीं सहन कर पाता है। तो ये एक उदाहरण रहा। दिल्ली में 40% जो बिजली है वो कंज्यूमर वातानुकूलित चीज जो एयर कंडीशनर है उसके लिए खर्च हो रही है 40%, तो बहुत बड़ा भाग है। तो इस तरह से ऐसे कृत्रिम पद्धति से हम समाज को नहीं चला सकते।
वन क्वेश्चन आई हैव हर्ड हियर इन योर लेक्चर,
वो हिंदी में पूछ सकते हैं, महाराज जी से पूछना है।
यूज ओनली व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ओनली व्हाट यू नीड। एक लेक्चर आपने इसके ऊपर अगर दिया था महाराज, तो मैं बाद में अपने एक उदाहरण दिया था कि अगर हम कुछ भार का वस्तु जो भार फैक्ट्री में तैयार किया, अगर हम इसको उधर उपयोग करना चाहते हैं लेकिन हम उसको तैयार नहीं कर सकते तो हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे समझ, तो व्हेन आई एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल टू सम डिवोटी ही सेड देयर इज नो रेफरेंस इन द वेयर प्रॉपर आई सेड दिस आई वांटेड टू नो।
वो बादल से नहीं लिया है, कोट बादल से उठा के नहीं लिया तो उपाय से ही लिया है। प्रभुपाद जी का कथन है, यूज व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ओनली व्हाट यू नीड। केवल उन चीजों का प्रयोग करो जिनका स्वयं उत्पादन कर सकते हो और उन्हीं चीजों को उत्पादित करो जिनकी वास्तव में तुम्हें आवश्यकता है। ये स्वावलंबी समाजों के लिए एक बुनियाद है, सूत्र है, मूलभूत सूत्र है। और यही सेल्फ सफिशिएंसी या स्वावलंबी जीवन है। तो अवश्य प्रभुपाद जी से ही तो सीखे, नहीं तो हमने अपने मन में कल्पना करके तो नहीं निकाली। प्रभुपाद जी कहते हैं समस्या ये है कि भक्त लोग प्रभुपाद के किताबों को, उनके शिक्षणों को ठीक से संपूर्णता पढ़ते नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि प्रभुपाद जी की दृष्टि कितनी विशाल है। वो सोचते हैं प्रभुपाद जी ने केवल पुस्तक वितरण के लिए कहा और मंदिर बनाने के लिए कहा और थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर प्रचार लेक्चर देने के लिए कहा, बस इतना हमारा मूवमेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी की दृष्टि बहुत बड़ी है और कितने सारे चीजों के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है, परंतु भक्तों ने पढ़ा नहीं है किताबें ठीक से, ना वो प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनते हैं ठीक से, इसलिए उनको जानते वो जानते नहीं है। इसलिए सोचते हैं ये कैसे हो गया। मुझे याद है कई साल पहले एक बड़े मंदिर में मैं रविवार का क्लास दे रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गोरक्षा के ऊपर कुछ बोलिए। उस समय, ये अभी कभी की बात है, अभी 20 साल हुए होंगे, तो हमने कुछ कह दिया वो संडे का क्लास गोशाला गोरक्षा गोसेवा के ऊपर, तो कई ब्रह्मचारी उसके बाद आए थे कि प्रभुपाद ने कहा है क्या ऐसे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ना प्रभुपाद जी ने क्या, ना उनको पता है कि इस कौन में प्रभुपाद क्या 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 स्थापित करके गए, क्या क्या किया। तो उससे उनको लगा कि ये कोई नई चीज है, ये कहां से आ गया, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की वाणी सुनी नहीं पर्याप्त मात्रा में, प्रभुपाद की किताबों को सही तरह से पढ़ा नहीं।
प्रभुपाद क्या चाहते थे उनको ठीक से उनको जाना नहीं, इसलिए ऐसे करते हैं। है ढूंढ के निकाल के देंगे उनको, ठीक है। वेदाभ्यास में भी कई चीजें हैं, कई चीजें नहीं है।
अभी जो
माधु प्रभु को पूछो,
इतना तड़क जैसे लगता है लेकिन मैं तड़क पे नहीं पूछ रहा हूँ। अभी बोल रहे कि आहार से आदमी को चेतना शुद्ध होते, तो अभी जो आहार की समस्या है ना इतना मतलब दूर की, तो पूरी बोला कि ये 100 साल के बाद, उससे पहले लगभग ठीक ही था, तो आज से 5000 साल पहले भगवान बोल रहे कि धर्म की पतन है, मतलब हर तो आदमी के चेतना के धर्म के पतन, मतलब आदमी के चेतना के भी पतन है। और जब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के, उस समय दुर्योधन की तरफ लोग ज्यादा था और पांडव की तरफ लोग, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अधर्म की जो भारी ज्यादा था, तो चेतना के बारे में बता रहा हूँ। आदमी का चेतना उस समय भी मतलब क्या है खराब था, मतलब अच्छा आहार करने के बाद में भी, तो मतलब कैसे समझ सकते हैं।
आहार
शुद्ध हो सत्व शुद्ध, ये भगवद गीता में कौन सा श्लोक में 3.11 में प्रभुपाद ने इसको पोस्ट किया। आहार तभी शुद्ध होता है जब यज्ञ किया जाता है, लेकिन अशुद्ध आहार से तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ समुचित संपूर्ण तरह से आहार तभी शुद्ध होगा जब वो यज्ञ शिष्ट होता है। अगर कोई यज्ञ नहीं करेगा खाली शुद्ध आहार खाएगा तो भी नहीं होगा। लेकिन शुद्ध आहार के बिना आप, शुद्ध आहार के बिना आप यज्ञ भी कर सकते हैं। भगवान को क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं वो, ये क्या बोलते हैं, सुकर का चर्बी का तेल से बना के खिला सकते हैं, तो वो यज्ञ होगा कि नहीं। तो आहार तो शुद्ध होना ही पड़ेगा, तो ही तो यज्ञ हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा। वो लोग यज्ञ नहीं कर रहे थे, शुद्ध आहार खा रहे थे, लेकिन शुद्ध करने के लिए आहार को यज्ञ करना ही पड़ेगा। तो लेकिन शुद्ध आहार ही नहीं है तो आप यज्ञ कैसे करेंगे, समझ रहे
हो।
नहीं वो 3.11 में, 3.11 उसकी पर्पस में तो उसके पहले का काम ही नहीं हो रहा है, शुद्ध आहार ही नहीं है, तो यज्ञ कैसे शुद्ध हो जाए।
हरेर नामैव केवलम ये कहते हैं, तो अगर किसी चीज पर डिपेंड है हमारे श्रवण कीर्तन, जैसे हरे नाम लेना किसी चीज पर आधारित है, तो ये हरे नाम की शक्ति को क्या कम नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम केवल ऑर्गेनिक जब खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो ये जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप में हरिनाम इतना शक्तिशाली है, जब साधक प्रयत्न करता है थोड़ा बहुत, उसका प्रयत्न में कुछ बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि आहार ठीक नहीं, लेकिन हरिनाम भी अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगा, उसके हृदय में शुद्धिकरण करेगा, क्योंकि ये कलयुग का धर्म है और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने इसको विशेष शक्ति दे के दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है, ये फार्म कम्युनिटी बहुत अच्छा है, जरूरी है साधक के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, कुछ ऑर्गेनिक उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, शुद्ध आहार नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो उसकी प्रगति बहुत अच्छी होगी ये माना, लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा है, जैसे किसी पाश्चात्य देश में रह रहा है, तब वो ऐसा साधक क्या करेगा उस समय, क्या उसको कृषि क्षेत्र में जाकर उसका आधार लेना ही पड़ेगा, या वो केवल हरिनाम पर आश्रित रहकर ये सोचते हुए कि मेरा आहार कभी भी शुद्ध नहीं मिल सकता मुझे, तो ये सिंसियरिटी से वो जप करेगा तो भी वो प्रगति नहीं कर सकता।
बेगिंग द क्वेश्चन, बेसिकली यू सी द पॉइंट इज दैट हरे नाम एव केवलम, बट सिर्फ आप हरे नाम ही लेते हैं क्या? यू ओनली टेक द होली नेम, यू ऑल्सो हैव टू ईट, व्हाट यू गोइंग टू ईट, what are you going to eat? Okay, you have to eat prasadam. Prasadam is what? Any contaminated thing can you offer? I mean, will it be considered prasadam? So then obviously we have to try to get pure things. And if you don't, then if it is an apad dharma, what do you call it? An emergency religion, Krishna can understand. But if it's just simply plain laziness that you don't want to look for good food, then how can you call it? You know, Krishna will understand. Krishna knows us more than we know us. So if you simply because of some, you know, make some excuse that I will not offer you any good food, what can I do? But Sanatana Goswami was there, he said, Namat niye kya karu? He said, you use whatever get. But then if it is not our case, then how can we do it? See, we have to attempt to offer Krishna
the best.
And secondly, it's not just organic, because mind you, organic food is also not pure. Because they're using blood, bone meals, fishery waste, and all kinds of things which are not, sattvic, when they're growing organic. So we're not just bothered about growing organic food. We're bothered about good, pure food, which is offered to Krishna. Mm-hmm. See, we're not just bothered about eating pure food. Eating pure food is not our only thing. We have to offer the best to Krishna. And then, when you take that, you will make advancement in chanting the holy name. And in the chanting the holy name, whatever, you know, Kali Yuga problems are there, that will be adjusted. But if you say that, no, I will not even, because I'm chanting the holy name, everything else will be accepted, you know, adjusted. And same Bhagavad Gita, Krishna says, Annat Bhavanti, everyone lives on?
On food.
The process of self-realization is? Holy name. But everyone has to live on? And then artificial standards of living, dependence on others' mercy, overeating and over sense gratification saps the very vitality of human energy. So for the holy name chanting, the holy name will come very, very difficult. I know it for myself. When I was down with my back pain, it was so difficult to chant 16 notes. Because I was lying down all the time. So difficult to chant. The mind was going, you know, without chanting the holy name, mind was getting so difficult. If you land up so many times in a hospital, you get sick so many times, then where is the holy name going to chant? Especially for a sadhaka. When you are advanced, we're not talking about that. You'll be completely absorbed. That's okay. You take the holy name also a part of that. Don't give an example of, you know, people like me and some advanced person. I'm talking about bare basic sadhakas like ourselves. We are very, you know, we need to have good food. And you know, we need to take good food, means good prasadam. You know, just any food. We need to get good prasadam.
तो उत्तर में प्रभु जी ने कहा कि अगर कोई आपद धर्म है ऐसी जगह पर कि जहां पर शुद्ध आहार नहीं मिल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपद धर्म का बहाना बनाकर हम आलसी नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण जानते हैं वो व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं।
आपद धर्म क्या है बोले?
आपद धर्म मतलब ऐसे इमरजेंसी समय आया है जहां पर हम बिल्कुल ही शुद्ध आहार नहीं ले सकते, ऐसी जगह पर हैं, किसी रेगिस्तान में हैं, या ऐसी जगह पर जहां पर अरे शाकाहारी मिलना भी बहुत मुश्किल है, ऐसी जगह पर रहकर हम जप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस जगह के लिए कुछ अलग नियम होते हैं, तो उसको आपद धर्म कहते हैं। लेकिन हर समय आपद धर्म नहीं होता। भगवान आपद धर्म समझते हैं और आपद धर्म के नाम पर अगर आलस कर रहे हैं, हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कृष्ण को अच्छा शुद्ध आहार, अच्छा शुद्ध भोग लगाने के लिए, अगर हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो वो आलस है, उसकी स्वीकृति नहीं है। क्योंकि हालांकि कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन अन्नात भवंती भूतानि, सारे जीव अन्न पर ही निर्भर है, तो कि अन्न भी बहुत जरूरी है। और हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध अन्न खाना या ऑर्गेनिक चीजें खाना नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा है कि हम शुद्ध अन्न, शुद्ध भोग भगवान को अर्पित करके उसको यज्ञशिष्ट के रूप में ले, ये हमारा उद्देश्य है। तो वो लेने पर हरिनाम करने की शक्ति आएगी, या फिर हरिनाम या फिर हमारे अध्यात्म में प्रगति होगी। जैसे प्रभु जी अपने आप का उदाहरण दे रहे थे कि बिना शुद्ध आहार या बिना तंदुरुस्त शरीर के जब करना भी बहुत मुश्किल है। जब उनकी कमर दर्द कर रही थी तो बहुत मुश्किल था जब करना, तो उनका साक्षात्कार है कि कितना शरीर को ठीक रखना जरूरी है। तो एक बहुत प्रगत भक्त ऐसा कर सकता है अपने शरीर के किसी भी परिस्थिति में अच्छा जप कर लेगा या कुछ भी खाकर जप कर सकता है, लेकिन सर्वसाधारण साधक के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो हालांकि कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन उसको करने के लिए भी ये सारे कृषि संबंधी जो जीवन है वो जरूरी है।
मतलब अभी हम जैसे इस प्रकल्प में मतलब ऐसा विचार आ गया अभी करने का, लेकिन हम ऐसे जगह से आए और ऐसे एजुकेशन से आए हैं कि वहाँ पर हमें मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादातर खाने में वगैरह रेगुलेटेड नहीं है, तो हम मतलब उसमें वो जो प्रॉपर ने जो बुक्स में लिखा है उसको कैसे हम मतलब उस हमारे जीवन में ला सकते हैं पूरी तरह से। हमने अपना खुद का उदाहरण दिया कि कैसे आप पूरा मेहनत करते थे, तो उतना हमें मतलब हमारे पास लगता है कि हमें एनर्जी ही नहीं है। अगर कुछ सेवा बोलते हैं हमारे जो वरिष्ठ हैं तो हमें लगता है कि अरे हमें ज़्यादा दे रहे, तो मतलब कि वो जो मानसिक ये था बल था हमारे पास उतना नहीं है, तो वो कैसे पा सकते।
क्योंकि हमको सब चीज़ आसानी से मिल रहा है, वी गेटिंग थिंग्स वेरी इजीली, सो वी हैव नो प्रेशर ऑन अस टू एक्चुअली परफॉर्म। बट व्हेन वी हैड टू सर्व, यू नो, सर्व अंडर वेरी ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, देन वी हैड टू सर्वाइव। सो आई डिडंट हैव एन ऑप्शन टू डू नॉट टू डू समथिंग। सो व्हेन ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस आर नॉट देयर, यू नो, एवरीथिंग इज कमिंग ईजिली। You know, that's what I say, if the bottom is not working, the leaders cannot guide. So if we at the bottom don't work hard, then the leaders will, you know, then who's going to give us our basic needs? Who's going to give us our basic needs? Because the leaders are giving us our basic needs, we are sitting tight, you know, no one's bothered. We are not bothered about what's going on. Even if I don't have to work hard, so what, you know, I'm anyway get. But when you didn't have a single paisa on your pocket, I mean, then nothing, there's no nothing in the account, then what will you do? So because we're getting, you know, we're getting used to living a life with someone else's cost, so therefore we are taking it easy, we're not bothered. If you had to, you know, earn, you know, 50, 60, 70,000 rupees to maintain your family, then how much hard work you have to do? Will you leave your work and say, no, today I will do my chanting, I didn't finish my chanting in the morning, so I will sit down and chant today. I will not go out to work. You say that? You will work, no? So that's the same thing here. Because we're getting it easy, so therefore we're not getting really bothered about it.
कि लोगों पर जब कोई अधिकारी व्यक्ति कहता है कि ये काम कर तो बहुत बोझा लगता है, तो ये इस कारण से होता है क्योंकि हम पर उतना जिम्मेवारी नहीं है, वो करना ही है। क्योंकि प्रभु जी जब मंदिर चला रहे थे तो उनको चलाना ही था, दूसरा कोई पर्याय नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जब करना ही होता है तो वो मन तैयार हो जाता है वो करने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। और दूसरी तरफ जब हमारे वरिष्ठ या हमारे जो लीडर्स हैं वो लाकर कुछ चीजें हमको आसानी से दे रहे हैं, तो हमारी मानसिकता इस तरह से बन जाती है क्योंकि मूलभूत चीजें आसानी से मिल रही है तो हम उसको आसानी से ले लेते हैं, इजीली ले लेते हैं, तो इसके कारण से मन कमकुवत हो जाता है। लेकिन जब हमको जानना ये कर, जैसे कोई परिवार का व्यक्ति है, उसको महीने में 50,000 कमाना ही है परिवार चलाने के लिए, तो वो कुछ भी करके वो कमा के रहेगा। तो उसी तरह से जब हम पर जिम्मेवारी है या फिर इतना कड़ा प्रेशर है कि ये करना ही है, तो स्वाभाविक रूप से मन प्रशिक्षित हो जाएगा उस प्रेशर को लेने के लिए। तो इस तरह से हम ऊपर के जो अधिकारी गण हैं उनको बड़े काम करने के लिए छोटे काम हम करते हुए उनको समय दे सकते हैं।
Another example of this village is they're getting 2 or 3 rupees rice, and you see they don't want to work. Why? Because they're getting cheap rice. They don't want to work. They don't need to work. So similarly, it's our case also. We're getting cheap food, so therefore we're not interested in doing anything. Your cows, you give them food every day inside. They will go outside. They don't want to go. Everything is inside. Why they will go? This is animal mentality. When Human mentality is that no, I have some other responsibility. I should do.
जैसे व्यक्ति आसानी से चीजें मिलने पर आलसी बन जाता है, इसका उदाहरण है जैसे आप गांव वालों को 2 रुपए में चावल मिल रहे हैं तो गांव वाले काम करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि आसानी से उनको चावल मिल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है जब हम गायों को काम नहीं करवाते, अंदर के जमीन में लेके नहीं जाते और यहीं पे आसानी से उनको खाने के लिए देते हैं तो कुछ दिन के बाद वो काम करना, वो अंदर जाना छोड़ देते हैं, वो जल्दी मानती नहीं है। तो जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो ये मानसिकता हो, हम मानसिक तरह से काम करने के लिए बड़े आलसी हो ही जाते हैं।
ठीक है, अंतिम प्रश्न।
अभी जैसे हमारा गृहस्थ जीवन को थोड़ा उसको सेटल करके हम अभी इधर जाकर देखा जाए तो हम इधर आए, दृष्टिकोण क्या है कि हमारा ग्रह है कि यहाँ हम आकर बोझ बन गए तो हमको ऐसा ना लगे कि हम अभी इस प्रकल्प पे बोझ।
See, the fact is that there are, according to one's, this is the natural system that we have in this world from, you know, from the time a child is born till the time when his, when a boy's voice breaks, he is a brahmachari, naturally a brahmachari. No one becomes a brahmachari. You remain a brahmachari. You don't become a brahmachari, you remain one. There's no concept of becoming a brahmachari. So when one is young, he has the ability to work, he has the ability to learn, especially between the age of up to around 13, 14 or so. And then if he wants to remain a brahmachari, he can remain a brahmachari, but you don't break your brahmachari and then become a brahmachari. That concept is never there. It's some kind of funny thing. It doesn't exist. It is, you know, that is again an apadharma, or it is an, what do you call it, an adult reformation program. So then, after that, one has a time of productive years of his life, after 15 to around 50. So after the 50, Pancha Shodham Vanam Brajit, now you're in the stage of Vanaprastha, when you have to come and to, you know, at a stage when you cannot work physically and mentally, you, material energy, working material energy, that ability goes down. Okay? So that is to be accepted. We have to accept. People at different stages of their life. But if someone is, you know, 20 or 30 years old and says, I'm taking Vanaprastha, it doesn't make any sense. At that stage, when he's 50, he's supposed to take Vanaprastha. And he's, at that age, with the wisdom that he has of the years of living, he has to help others, guide others, and do whatever he can do to come out of this material world and prepare for life. So that is what is the natural system of Vanaprastha. Because after 50, one does not have the physical and the mental abilities to manage material nature as he had done before. So he can use his wisdom to help in this case, because years of wisdom that we have behind us, and we can do other things which does not need that. But at the same time, we have to encourage the younger people with our wisdom to do that, to do what they can do. If you don't, then you, and again, we are not letting them do the activity. And they should also see that an old man, after his family life, has left home, which is again a very good example for the younger generation, that yes, there is nothing, you know, we have to leave and we have to, spiritual life is most important. So we are giving more importance to spiritual life. So it is very important. This is naturally has to take place. Pancha Shodham Vanam Brajit, after 50, one cannot do material management. It's very difficult to do it because physically and mentally it's not possible to do it.
स्वाभाविक रूप से या पारंपरिक रूप से पद्धति ये होती है कि एक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि। ब्रह्मचारी कोई बनता नहीं है, वो रहता है, क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो वो आवाज उसकी आने तक वो ब्रह्मचारी ही उसका जारी रहता है और उस पर निर्भर करता है कि वो ब्रह्मचारी रहेगा या गृहस्थ आश्रम में जाएगा। तो एक बार कोई ब्रह्मचारी को तोड़कर फिर ब्रह्मचारी बनना, ये ऐसी परंपरागत या वर्णाश्रम में पद्धति नहीं है, ये आपत्कालीन धर्म हो सकता है। तो वानप्रस्थ जो 50 साल व्यक्ति के हो जाते हैं तो वो वानप्रस्थ ही बनता है, तो घर वगैरह छोड़कर वो किसी वन में या ऐसे स्थान पर आता है जहां पर वो भजन वगैरह कर सके, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि उस समय वो नया कोई काम नहीं कर सकता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसको ऐसे स्थान में जाना जरूरी होता है जहां पर उसको पोषण मिले, उसको भजन वगैरह करने के लिए सुविधा मिले, तो ये स्वाभाविक है। तो वो वानप्रस्थ होने वाला व्यक्ति कोई बर्डन नहीं, कोई बोझा नहीं है समाज पर, बल्कि वो वानप्रस्थी में आकर अपने अपने जो उसने अनुभव लिए हैं उन अनुभवों को वो नवयुवकों को बताकर उनकी मदद कर सकता है कि जीवन में कैसे रहना चाहिए इस तरह से। और जब व्यक्ति वानप्रस्थी बनता है तो नवयुवकों के लिए वो अच्छा उदाहरण है कि नवयुवक उसको देखते हैं कि हमें भी 50 साल के बाद घर छोड़कर जाना है, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है नवयुवकों के लिए। तो इस तरह से वानप्रस्थी कोई बोझा नहीं है समाज पर, बल्कि एक अच्छा सेवा कर सकता है नवयुवकों को प्रशिक्षित करके और उनके सामने वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत करके।
वानप्रस्थीज आर एक्सीलेंट टीचर्स एक्चुअली, दे वर आइडियली दे वर एंगेज्ड इन आल्सो इन गुरुकुल, गुरुकुलस टू टीच यंगर जनरेशन बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, हाउ टू ग्रो रेज चिल्ड्रन, हाउ टू ट्रेन देम।
वानप्रस्थी सबसे उत्कृष्ट शिक्षक हैं क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रह चुके हैं और वो जानते हैं गृहस्थ आश्रम का मतलब बच्चों का वगैरह, उनको अनुभव है किस तरह से उनको प्रशिक्षित करना है, किस तरह से शिक्षण देना है। इसलिए पारंपरिक गुरुकुल पद्धतियों में वानप्रस्थी ये उत्कृष्ट शिक्षक माने जाते थे।
जय हरि वो,
हरि वो,
हरे कृष्णा, माधव प्रभु की श्री गोकुल धाम की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गौर प्रेमानंदे। हम कितने बजे मिल रहे हैं जी?
3 o'clock
बट कारवा डिवोटी कभी जा रहे हैं? कारवा डिवोटी
2:30
अच्छा ठीक है।
तो कारवार भक्तों में क्योंकि वो जा रहे हैं इसलिए 6 भक्त आए हैं, उनमें से कोई एक भक्त 6ों की तरफ से अपना कोई मंतव्य व्यक्त करे कि उनको यहाँ पे कैसे लगा और क्या उन्होंने सीखा।
6 कौन है ऊपर खड़े रही, सब लोग देखे कौन कौन है खड़े हुए कारवार के भक्त? गोवा के भक्त कहाँ है सर?
एक ही दिन आए।
अच्छा, एक ही दिन के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, बाकी बैठ जाए, एक ही बोलेंगे वो खड़े रहे।
कृष्ण महाराज, सभी भक्तों को प्रणाम। कोई यहाँ पर आकर के जब अपॉर्चुनिटी पता लगी हमको सभी को वहाँ पर, अतः कृष्ण ने बताया तो एक ही दिन में हमको पता लगा, एक दिन पहले एक ही दिन में सारी सेवाएं, क्योंकि हम सभी को जाने की इच्छा थी। ये पहला हमारा ब्रह्मचारी टूर था, हमको सभी को जाने की इच्छा थी, खासकर महाराज आ रहे थे महाराज के संग के लिए। तो अतुल ने भी बहुत सहयोग दिया, उन्होंने सारी सेवाएं एक ही दिन में संपन्न करा दी और हमको यहाँ भेजा। यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा, महाराज का एसोसिएशन मिला, सभी वरिष्ठ ब्रह्मचारियों का एसोसिएशन मिला, और खास कर लिए ये इस्कॉन में एक नया जो विषय है या फिर नया एक फील्ड है वर्ण आश्रम का और फार्म कम्युनिटी का, ये हमको देखने को मिला, और इसका जो जीवन है कैसे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं ये हमको देखने को मिला। तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और महाराज के जो प्रवचन थे भक्ति रसाम चैतन्य चरितामृत के ऊपर भक्ति से संबंधी, वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे, काफ़ी उन्होंने काफ़ी प्रेरणाएँ दी हमको, जो हम ले जा करके अपने साथ कई दिनों तक अपने साथ रख सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज के बहुत आभारी हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा, जय हरि बोल। कारवा ब्रह्मचारी की
जय।
अढ़ाई बजे कैसे जाओगे?
बस है,
बस
बस है।
ठीक, तो प्रसाद तैयार तो पहले थे।
आज जो दूसरा सेशन है वो जल्दी शुरू होगा क्योंकि शाम को बेलगाम के ब्रह्मचारी जा रहे हैं, तो 3 बजे शुरू होगा, 3:30 बजे नहीं, तो 3 बजे सभी उपस्थित रहे।
हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की
जय।
हरे कृष्णा।